एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जो लिखी तो काफी पहले गई थी, लगभग 30 साल पहले
जी,
लेकिन उसकी बातें आज शायद पहले से भी ज्यादा मायने रखती हैं। मैं हूं मेजबान एक का नाम
और मैं हूं मेजबान दो का नाम। नमस्कार।
और हम बात कर रहे हैं लॉरी गैरेट की बहुत ही प्रभावशाली किताब द कमिंग प्लेग। पूरा नाम है एक असंतुलित दुनिया में नई उभरती बीमारियां।
हाँ, द कमिंग प्लेग, न्यूली इमर्जिंग डिजीजेस इन अ वर्ल्ड आउट ऑफ बैलेंस।
और जैसा आपने कहा, मतलब COVID-19 के बाद तो
बिल्कुल,
और ये जो हम लगातार सुन रहे हैं, कभी बर्ड फ्लू, कभी मंकी पॉक्स, निपा,
सही।
तो ये किताब एक जरूरी चेतावनी जैसी लगती है।
एकदम, ये हमें याद दिलाती है कि भाई संक्रामक बीमारियों से हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है।
बिल्कुल, ये उस सोच को सीधी चुनौती देती है कि अरे, विज्ञान ने तो इन छोटे दुश्मनों पर काबू पा लिया है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि चेतावनी देने वाली शख्सियत है कौन। लॉरी गैरेट।
हाँ, लॉरी गैरेट वो अमेरिका की एक बहुत जानी मानी विज्ञान पत्रकार हैं, पुलित्जर पुरस्कार भी जीत चुकी हैं अपने काम के लिए।
अच्छा,
और उनकी खासियत यह है कि वो वैश्विक स्वास्थ्य, ये जो महामारियां हैं, और साइंस पॉलिसी, मतलब इनके बीच का जो जटिल रिश्ता है ना, उसे बहुत गहराई से समझती हैं। पर सिर्फ एकेडमिक समझ नहीं है, उनकी जो बैकग्राउंड है वो भी उन्हें खास बनाती है।
हाँ, ये बात दिलचस्प है। उनके पास जीव विज्ञान मतलब बायो की डिग्री है,
जी
हार्वर्ड में पब्लिक हेल्थ भी पढ़ा है उन्होंने,
हाँ,
पर जो चीज उन्हें एकदम अलग करती है वो है उनका वो रिपोर्टिंग का अनुभव, खोजी पत्रकारिता वाला।
बिल्कुल। वो सिर्फ लाइब्रेरी या लैब में नहीं रही,
नहीं,
वो जमीन पर उतरी, असलियत देखी उन्होंने। जायका, जैसे जायर में जो आज का कॉन्गो है, वहां 1976 में इबोला फैला था।
हाँ, सुना है।
उन्होंने वो मौके पर जाके कवर किया था
हाँ,
और उसी के लिए उन्हें पुलित्जर मिला।
वाह, ये तो बड़ी बात है।
बहुत बड़ी। वो वैज्ञानिकों से मिलती हैं, डॉक्टरों से, मरीजों से, नेताओं से, सबसे बात करती हैं, सबकी सुनती हैं।
और इसी वजह से उनका नजरिया काफी काफी बड़ा हो जाता है। वो सिर्फ एक पहलू नहीं देखती।
हाँ, वो माइक्रोबायोलॉजी को, पर्यावरण को, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, यहाँ तक कि इंसानी बर्ताव, इन सब को जोड़ पाती हैं।
अच्छा,
एक पूरी तस्वीर सामने रखती हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हो रहा है, बल्कि क्यों हो रहा है, ये समझने की कोशिश करती हैं। तो उनकी एक्सपर्टीज सिर्फ किताबों वाली नहीं है, अनुभव वाली है, जमीनी कहानियों वाली।
बिल्कुल। तो इतनी गहरी समझ के साथ जब गैरेट ने द कमिंग प्लेग लिखी, तो इसका मेन मैसेज क्या था? क्या कहना चाहती थी वो?
देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो एक तरह की चेतावनी है, वेकअप कॉल।
अच्छा, क्या है इसके पीछे, क्यों भ्रम था ये?
उनका तर्क ये है कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं, रोगाणु हैं,
हाँ,
ये सिर्फ वापस नहीं आ रहे,
अच्छा,
बल्कि ज्यादा चालाक, ज्यादा मजबूत होकर आ रहे हैं और अक्सर दवा प्रतिरोधी बनकर, मतलब जिन दवाओं से पहले मर जाते थे, अब उन पर असर ही नहीं होता।
ओ, ड्रग रेजिस्टेंट जिसे कहते हैं।
बिल्कुल। और चिंता की बात यह है कि इसके लिए काफी हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारी अपनी गतिविधियां।
यही वो बुनियादी सवाल है जो किताब उठाती है ना, कि भाई हमारे पास इतनी एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी है,
हाँ, इतनी तरक्की कर ली हमने,
तो फिर क्यों ये बीमारियां इतना बड़ा खतरा बन रही हैं?
गैरेट का जवाब क्या है? पर शायद थोड़ा थोड़ा चुभने वाला।
बताइए।
वो कहती है हमारी अपनी तरक्की ही इसके पीछे है।
हमारी तरक्की? वो कैसे? मतलब वैश्वीकरण?
हाँ, वैश्वीकरण, जिस तेजी से शहर बढ़ रहे हैं, बेतरतीब, शहरीकरण जिसे कहते हैं, पर्यावरण को जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं,
हाँ, वो तो है ही।
नई नई तकनीकें, हमारे समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, इन सब ने मिलकर, अनजाने में ही सही, इन नए और पुराने रोगाणुओं के लिए एक तरह से रास्ता खोल दिया है।
ओ, मतलब रेड कार्पेट बिछा दिया है।
हाँ, कह सकते हैं। गैरेट का तर्क है कि हम इंसान इन माइक्रोब्स के साथ एक लगातार जंग में हैं,
अच्छा,
पर हमने अपनी जीत का ढिंढोरा इतनी जोर से पीटा, इतने आत्मसंतुष्ट हो गए
कि तैयारी करना भूल गए।
बिल्कुल, अपनी सुरक्षा की तैयारी करना भूल गए, और नतीजा हम पहले से ज्यादा खतरे में हैं।
बाप रे।
तो ये किताब पॉलिसी बनाने वालों को, वैज्ञानिकों को और हम जैसे आम लोगों को जगाने की कोशिश है।
चलिए, तो फिर इस किताब में और अंदर चलते हैं, देखते हैं गैरेट ने अपनी बात कैसे रखी है। किताब के अलग अलग हिस्से हैं।
जी हाँ, कई हिस्सों में बटी है किताब।
पहला हिस्सा शायद इसी झूठी सुरक्षा की बात करता है कि कैसे ये भ्रम टूटा।
बिल्कुल, पहला भाग है ही नई महामारियां, झूठी सुरक्षा का टूटना। और इसमें वो कुछ चौंकाने वाले उदाहरण देती हैं, जैसे बोलिविया का 1962 में।
बोलिविया, क्या हुआ था वहाँ?
वहाँ एक अजीब सा बुखार फैला, बोलिवियन हेमोरेजिक फीवर कहते थे, खून बहने लगता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या बला।
तो कारण क्या निकला?
कारण बड़ा दिलचस्प था। CDC की टीम गई जांच करने,
अमेरिका की संस्था,
हाँ, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल। उन्होंने पाया कि इसका कनेक्शन चूहों से था।
चूहों से?
हुआ ये था कि मलेरिया कंट्रोल के लिए वहाँ DDT का खूब छिड़काव हुआ।
अच्छा, DDT तो बैन हो गया बाद में।
हाँ, तो DDT से मच्छर तो मरे पर बिल्लियां भी मर गईं।
बिल्लियां?
DDT से, हाँ। और बिल्लियां क्या खाती हैं?
चूहे।
ओहो, तो बिल्लियां मरी तो
चूहों की आबादी एकदम से बढ़ गई और उन्हीं चूहों से ये वायरस, माचुपो वायरस, इंसानों तक पहुंच गया।
कमाल है, मतलब एक अच्छा काम करने चले थे मलेरिया मिटाने,
और नतीजा बिल्कुल उल्टा हो गया।
ये दिखाता है कि हम जब प्रकृति में दखल देते हैं तो उसके नतीजे कितने अनसोचे हो सकते हैं।
वाकई। और फिर अफ्रीका में लासा और इबोला, उनका भी जिक्र है।
बिल्कुल, 1969 में नाइजीरिया में लासा फीवर और 1976 में जायर और सूडान में इबोला। गैरेट उन प्रकोपों की भयावहता बताती हैं, तेज बुखार, ब्लीडिंग, डेथ रेट बहुत ज्यादा।
हाँ, इबोला का नाम तो बहुत डरावना लगता है।
और उस समय डॉक्टरों और नर्सों ने अपनी जान पर खेलकर काम किया, कई मारे भी गए। और विडम्बना देखिए, गैरेट बताती हैं कि कई बार तो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस ही, जैसे कि ठीक से स्टरलाइज न की गई सुइयां, उन्होंने बीमारी को और फैला दिया।
ये तो बहुत दुखद।
हाँ, ये किस्से हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति में न जाने कितने अनदेखे अनजाने वायरस हैं, वो बस मौके का इंतजार कर रहे हैं।
ये तो हुई नई बीमारियां, लेकिन किताब का अगला हिस्सा शायद उन पर है जिन्हें हम लगभग हरा चुके थे या ऐसा सोचते थे।
बिल्कुल, दूसरा भाग है पुराना दुश्मन नए रूप में, भ्रम और हार। ये उन जानी पहचानी बीमारियों पर है जो ज्यादा ताकतवर होकर दवा प्रतिरोधी बनकर लौटी।
जैसे?
जैसे मलेरिया और हैजा। मलेरिया तो आज भी बड़ी समस्या है, भारत में भी।
हाँ, गैरेट बताती है कि कैसे क्लोरोक्वीन जैसी जो असरदार दवाएं थी,
हाँ,
वो तो बहुत चलती थी।
उनके बहुत ज्यादा और कई बार गैर जरूरी इस्तेमाल ने दवा प्रतिरोधी मलेरिया पैरासाइट को पनपने का मौका दे दिया। इसी तरह हैजा, जिसे साफ पानी और सफाई से रोका जा सकता है,
हाँ,
वो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में, खासकर शरणार्थी कैंपों में या जहां पब्लिक हेल्थ सिस्टम चरमरा गया था, वहां एकदम विस्फोटक रूप से फैला।
कोई खास उदाहरण?
1991 में पेरू में हैजा का बहुत भयानक प्रकोप हुआ था। पता है क्यों? क्योंकि सरकार ने पैसे बचाने के लिए पानी के क्लोरिनेशन सिस्टम में कटौती कर दी थी।
क्या बात कर रहे हैं?
हाँ, ये दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ कितना नाजुक सिस्टम हो सकता है, जरा सी लापरवाही और।
और ये सिर्फ, मतलब, विकासशील देशों की बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। गैरेट अमेरिका के भी उदाहरण देती हैं, जैसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम।
हाँ, सुना है।
और लीजनेस डिजीज। 1976 में फिलाडेल्फिया में एक होटल में अमेरिकन लीजन का सम्मेलन था।
अच्छा।
उसके बाद कई लोग एक अजीब से निमोनिया से बीमार पड़ गए। बाद में पता चला कि होटल के AC सिस्टम के कूलिंग टावर में एक बैक्टीरिया पनप रहा था।
AC से?
हाँ, सोचिए, हमारी आधुनिक सुविधाएं ही बैक्टीरिया का नया घर बन सकती हैं। हमारा बनाया हुआ माहौल भी इस पूरी पहेली का हिस्सा है।
ये तो सच में सोचने वाली बात है। इसके बाद गैरेट उस महामारी पर आती हैं जिसने शायद पूरी दुनिया को झकझोर दिया, HIV/AIDS।
बिल्कुल, तीसरा भाग पूरा HIV/AIDS पर है। गैरेट इसे परम आने वाला प्लेग कहती हैं। वो इसकी पूरी कहानी बताती हैं।
कहाँ से शुरू हुआ ये?
संभावित शुरुआत तो शायद मध्य अफ्रीका में बंदरों से इंसानों में हुई, और ये भी शायद 20वीं सदी की शुरुआत में ही।
इतना पहले?
हाँ, लेकिन दशकों तक ये वायरस चुपचाप गुमनामी में फैलता रहा, किसी को पता नहीं चला।
और फिर इसके फैलने में सामाजिक और राजनीतिक चीजों का भी हाथ रहा।
बहुत बड़ा हाथ। गैरेट बताती हैं कि कैसे उपनिवेशवाद के बाद जो बदलाव आए, शहर बढ़े, व्यापार और यात्रा के नए रास्ते खुले, लोगों के सामाजिक व्यवहार बदले, इन सब ने अनजाने में इस वायरस को दुनिया भर में फैलने में मदद की। और जब ये बीमारी सामने आई 80 के दशक में,
हाँ,
तो दुनिया की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी, पूर्वाग्रहों से भरी हुई थी, ना काफी थी, खासकर अमेरिका में शुरुआती सालों में।
हाँ, उस वक्त तो बहुत ज्यादा डर और सामाजिक कलंक जुड़ा था इससे।
बिल्कुल, और राजनीतिक अनदेखी भी। गैरेट इसी की पड़ताल करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे ये सामाजिक डर, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के बीच की आपसी खींचतान, इन सबने मिलकर संकट को और गहरा बना दिया।
और एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी तो थे।
हाँ, एक्टिविस्ट अब जैसे ग्रुप्स का जिक्र करती हैं जिन्होंने सरकारों पर, दवा कंपनियों पर दबाव बनाया। एड्स ने ये साबित कर दिया कि कोई भी बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो पूरे समाज और राजनीति को आईना दिखाती है।
तो ये सब हो क्यों रहा है? गैरेट इन सब महामारियों के पीछे क्या कारण देखती हैं? किताब का चौथा भाग इसी पर है, क्यों बीमारियों का कड़ा।
जी हाँ, यहाँ गैरेट उन बुनियादी ताकतों की बात करती हैं जो इन बीमारियों को हवा दे रही हैं, और इसमें कई चीजें शामिल हैं।
जैसे?
पहला तो है हमारी बढ़ती आबादी और हमारा रहन सहन।
अच्छा।
ज्यादा लोग, खासकर बड़े शहरों की भीड़ भाड़ वाली बस्तियाँ जहाँ सफाई का इंतजाम अक्सर ठीक नहीं होता।
हाँ, वहाँ तो बीमारियाँ जल्दी फैलती हैं।
बिल्कुल, वो बीमारियों के फैलने के लिए एकदम सही माहौल बन जाता है। ऊपर से ये जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं इतनी बढ़ गई हैं।
हाँ, आजकल तो कोई कहीं भी पहुंच जाता है घंटों में।
वही तो, कोई वायरस भी हजारों मील दूर घंटों में पहुंच सकता है। दुनिया छोटी हो गई है वायरसों के लिए भी।
और पर्यावरण का क्या रोल है इसमें? आजकल ये वन हेल्थ की बात बहुत होती है।
हाँ, और ये गैरेट की किताब की एक मुख्य थीम है, पारिस्थितिक व्यवधान, इकोलॉजिकल डिसरप्शन।
मतलब?
मतलब ये कि हम जो जंगल काट रहे हैं, नदियों पर बांध बना रहे हैं, दूर दराज के इलाकों तक सड़कें पहुंचा रहे हैं।
हाँ,
इससे हम उन जंगली जानवरों और उनके अंदर रहने वाले अनजान वायरस और बैक्टीरिया के संपर्क में आ रहे हैं जिनसे पहले हमारा कोई वास्ता नहीं था।
ओह,
जिसे ज़ूनोसिस कहते हैं।
बिल्कुल, जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारियां,
निपाह, एबोला, शायद कोविड भी, ये सब उदाहरण हैं। और जलवायु परिवर्तन भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है।
ये तो हुआ प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा। क्या हमारी अपनी तकनीक, हमारा उद्योग भी इसमें शामिल है?
हाँ बिल्कुल, गैरेट इसे आयाट्रोजीनिसिस कहती हैं, मतलब इलाज से जुड़ी बीमारियां।
इलाज से जुड़ी?
वो कैसे?
सबसे बड़ा उदाहरण तो है एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल।
हाँ वो तो है, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि एंटीबायोटिक ले लिए।
इसी से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया है, सुपर बग्स बन गए, मामूली इन्फेक्शन भी जानलेवा हो रहे हैं क्योंकि दवाएं बेअसर हो गई हैं।
ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है।
बिल्कुल, इसके अलावा खून चढ़ाना, खासकर शुरुआती दिनों में जब HIV वगैरह की ठीक से टेस्टिंग नहीं होती थी।
हाँ,
ऑर्गन ट्रांसप्लांट और यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर जो खाने का उत्पादन होता है जैसे मीट इंडस्ट्री, ये सब भी बीमारियों के फैलने के नए रास्ते खोल सकते हैं।
और एक और पहलू आपने बताया था, गरीबी और असमानता, उसका क्या रोल है?
गैरेट इसे बहुत अहम मानती है। वो कहती है कि गरीबी शायद बीमारी की सबसे बड़ी साथी है। ऐसा क्यों?
देखिए, कुपोषण से शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है।
हाँ,
भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहना पड़ता है जहाँ संक्रमण आसानी से फैलता है।
सही।
फिर युद्ध, सामाजिक उथल पुथल, सरकारों का नाकाम होना, इन सब स्थितियों में पब्लिक हेल्थ सिस्टम टूट जाता है और महामारियां बेकाबू हो जाती हैं।
तो ये तो बहुत सारे कारण मिलकर एक तरह का तूफान खड़ा कर रहे हैं।
हाँ, एक परफेक्ट स्टॉर्म।
तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया इससे निपटने को तैयार है? क्या कोई है जो जिम्मेदारी ले रहा है? ये शायद किताब के पांचवें हिस्से का सवाल है। क्या कोई प्रभारी है वैश्विक विफलता?
बिल्कुल, और गैरेट का जवाब यहाँ थोड़ा निराशाजनक है। वो कहती हैं कि वैश्विक स्तर पर हमारी तैयारी बहुत कमजोर है।
WHO जैसी संस्थाएं?
हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। वो कहती हैं कि ये संस्थाएं अक्सर नौकरशाही में फंसी रहती हैं, सदस्य देशों की आपसी राजनीति का शिकार होती हैं, बजट की कमी से जूझती हैं, तो उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
और देशों की अपनी संस्थाएं जैसे अमेरिका की CDC?
गैरेट उनकी भी आलोचना करती हैं, बताती हैं कि कैसे राजनीतिक प्राथमिकताएं बदलने से, फंडिंग कम होने से CDC की क्षमता भी घटी है।
तो मतलब कोई मजबूत सिस्टम नहीं है।
गैरेट का तर्क यही है कि हमारे पास एक मजबूत, अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल सर्वेलेंस सिस्टम नहीं है। मतलब ऐसा सिस्टम जो किसी भी नए खतरे का जल्दी से पता लगा सके और तेजी से एक्शन ले सके।
और अक्सर ऐसा नहीं होता।
अक्सर जब तक हम हरकत में आते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है।
तो भविष्य कैसा दिखता है? क्या किताब हमें बिल्कुल ही नाउमीद कर देती है? आखिरी हिस्सा, मानवता का भविष्य।
देखिए, ये एक गंभीर चेतावनी है पर पूरी तरह निराशावादी नहीं। गैरेट का निष्कर्ष यह है कि जो सबूत उन्होंने पेश किए हैं उनके आधार पर एक बड़ी विनाशकारी वैश्विक महामारी,
हाँ,
उसका आना अगर का सवाल नहीं है बल्कि कब का सवाल है।
बाप हे, ये सुनने में तो बहुत डरावना है।
लेकिन वो यही नहीं रुकती, वो एक समाधान का रास्ता भी दिखाती हैं, एक आह्वान करती हैं।
क्या करना होगा?
वो कहती हैं कि हमें स्वास्थ्य को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा पूरी तरह से।
अच्छा।
हमें पब्लिक हेल्थ के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश करना होगा, सिर्फ इलाज में नहीं बल्कि रोकथाम में, बीमारियों को होने से रोकने में।
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर.
बिल्कुल. देशों के बीच मजबूत ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, पर्यावरण का जिम्मेदारी से प्रबंधन करना होगा, और शायद सबसे जरूरी
क्या,
हमें इन सूक्ष्म जीवों की दुनिया के प्रति अपना अहंकार छोड़ना होगा. उनके प्रति एक नया सम्मान और लगातार सतर्कता अपनानी होगी.
तो किताब एक चुनौती के साथ खत्म होती है.
हाँ, कि क्या हम खतरे को गंभीरता से लेंगे.
इस पूरी चर्चा से कई मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं.
हाँ हाँ.
पहला तो यही कि भाई हम इंसान कोई सुपरमैन नहीं है.
हाँ हाँ, बिल्कुल.
ये सोचना कि हमने प्रकृति और बीमारियों पर जीत पाली है, ये हमारा वहम था, और इसी वहम ने, इसी आत्मसंतोष ने हमें कमजोर बनाया.
सही. भारत में हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बढ़ता खतरा देख रहे हैं. ये इसी सोच का नतीजा है कि हर चीज के लिए एंटीबायोटिक है ना.
हाँ. दूसरी अहम बात यह है कि हमारा स्वास्थ्य और पर्यावरण ये जुड़े हुए हैं
अविभाज्य रूप से.
बीमारियां कहीं बाहर से नहीं आती, अक्सर वो हमारे अपने कामों का नतीजा होती हैं. जब हम जंगल काटते हैं, जानवरों के घरों में घुसते हैं,
तो हम अनजाने में नए वायरसों को दावत दे रहे होते हैं.
हाँ, भारत में निपाह हो या क्यासन और फॉरेस्ट डिजीज,
KFD,
हाँ, मंकी फीवर,
ये सब जूनोटिक रोग यही याद दिलाते हैं.
तीसरा, वैश्वीकरण. इसने दुनिया को जोड़ा जरूर है,
पर बीमारियों के फैलने के लिए सुपर हाईवे भी बना दिए हैं.
हम हवाई जहाज से कोई वायरस घंटों में दुनिया के दूसरे कोने में.
कोविड-19 ने ये कड़वा सच हमें दिखाया, कहीं का खतरा हर जगह का खतरा है.
चौथा, हमारी अपनी मेडिकल तरक्की भी.
बिल्कुल.
एक दोधारी तलवार है.
बिल्कुल. एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल सुपर बग्स बना रहा है.
हाँ.
खून चढ़ाना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये जीवन बचाने वाली चीजें, पर अगर सावधानी न बरती जाए तो संक्रमण भी फैला सकती हैं.
इसलिए अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल इतना जरूरी है,
और एंटीबायोटिक का सही सोच समझ कर इस्तेमाल.
पांचवा, पब्लिक हेल्थ के ढांचे की अनदेखी.
हाँ, WHO हो या हमारे अपने देशों के सिस्टम, अक्सर उन्हें वो अहमियत, वो संसाधन नहीं मिलते जो मिलने चाहिए.
भारत में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च GDP का बहुत छोटा हिस्सा है,
और उसका असर हम जमीनी स्तर पर देखते हैं.
और छठा, शायद सबसे जरूरी, ये बीमारियां सामाजिक और आर्थिक दरारों का फायदा उठाती हैं.
बिल्कुल. रोगाणु वहीं हमला करते हैं जहां समाज कमजोर होता है.
गरीबी, कुपोषण, युद्ध, विस्थापन,
किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह, जैसे शुरुआती एड्स संकट में समलैंगिक पुरुषों के साथ हुआ, ये सब बीमारियों को और बढ़ाते हैं. भारत
में TB को ही देख लें, इसका गरीबी और सामाजिक उपेक्षा से कितना गहरा नाता है.
सही ना?
गैरेट की किताब में कुछ बातें तो वाकई झकझोर देती हैं. जैसे वो कहती हैं कि जब दुनिया स्पेस रेस और कोल्ड वॉर में लगी थी,
हाँ, हाँ.
तब हम माइक्रोब्स के मोर्चे पर एक ज्यादा खतरनाक जंग हार रहे थे, चुपचाप, क्योंकि हम खुद को बहुत बड़ा समझ रहे थे.
हमने दुश्मन को कम आका.
बिल्कुल. और ये वाली बात कि नई महामारियां कोई भगवान का कहर नहीं है,
नहीं.
वो हमारे अपने कामों का नतीजा है. हम जंगल काटते हैं, बांध बनाते हैं, एक तरह से हम खुद ही अपनी महामारियों के डिजाइनर हैं.
ये जिम्मेदारी का एहसास कराता है.
और एड्स पर उनकी बात भी बहुत गहरी है, कि एड्स ने सिर्फ इंसानी इम्यून सिस्टम पर हमला नहीं किया,
बल्कि
इसने हमारे समाज के इम्यून सिस्टम पर भी हमला किया.
हाँ.
हमारी सामाजिक, हमारी राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया.
सही कहा.
और आखिर में वो माइक्रोब्स के नजरिए से सोचने को कहती हैं.
अच्छा,
वो कैसे?
कि उनके लिए तो हम इंसान एक बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई दावत की तरह हैं. उनका मकसद तो सिर्फ जिंदा रहना और अपनी नकल बनाना है.
हाँ.
और इस काम में वो हमसे कहीं ज्यादा क्रिएटिव हैं, ज्यादा लचीले हैं. ये हमें हमारी असलियत दिखाता है, हमारी कमजोरियां.
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? हम क्या कर सकते हैं?
देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर तो सबसे पहले अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक होना.
हाँ, वो तो जरूरी है.
टीके लगवाना, सफाई का ध्यान रखना, और खासकर एंटीबायोटिक्स, उनका इस्तेमाल सोच समझ कर करना. डॉक्टर कहे तभी लेना, वायरल बुखार में नहीं.
हाँ, ये बहुत आम है, लोग खुद ही ले लेते हैं.
वही. और यात्रा करते समय, खासकर विदेश जा रहे हैं, तो जरूरी सावधानियां बरतना.
और ये समझना कि खतरा है, पर डरना नहीं है, लापरवाह भी नहीं होना है.
बिल्कुल. संतुलन बनाना है.
और सामाजिक स्तर पर?
सामाजिक और पेशेवर स्तर पर शायद हम बेहतर पब्लिक हेल्थ सेवाओं के लिए आवाज उठा सकते हैं.
हाँ.
अपने डॉक्टरों से एंटीबायोटिक्स के सही इस्तेमाल पर बात कर सकते हैं. और अगर हम किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर्यावरण से जुड़े फैसले होते हैं,
अच्छा,
तो स्वास्थ्य के पहलू को भी ध्यान में रख सकते हैं. इसी को वन हेल्थ अप्रोच कहते हैं. इंसान, जानवर, पर्यावरण, सबका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है.
ये अच्छी बात है. और दुनिया के स्तर पर
वैश्विक स्तर पर ये किताब साफ बताती है कि हमें मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए,
क्योंकि बीमारियों की कोई सरहद नहीं होती।
बिल्कुल, उनका मुकाबला भी मिलकर ही करना होगा। WHO जैसी संस्थाओं को मजबूत बनाना होगा, और सिर्फ बीमारी फैलने पर रिएक्ट करना काफी नहीं है,
तो
हमें उनके मूल कारणों पर ध्यान देना होगा। गरीबी, असमानता, पर्यावरण का विनाश,
जड़ पर काम करना होगा।
बिल्कुल।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि हम इंसान प्रकृति से अलग या ऊपर नहीं हैं। हम इसी दुनिया के एक जटिल जाल का हिस्सा हैं।
सही।
हमारी सेहत इस धरती की सेहत से जुड़ी है, और ये जो संक्रामक रोग है, ये कोई ऐसी पहेली नहीं जिसे हमने सुलझा लिया।
नहीं,
ये एक लगातार चलने वाला तनाव है, एक संतुलन है जिसे हमें समझदारी और होशियारी से साधना होगा हमेशा।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कैसे हमारी अपनी तरक्की ही हमारी दवाएं, हमारी यात्रा, हमारा उद्योग हमारे लिए खतरा बन सकती है अगर हम उसके नतीजों के प्रति अंधे बने रहें। ये किताब हमें विनम्रता सिखाती है। अहंकार छोड़ो, माइक्रोब्स की दुनिया का सम्मान करो और लगातार चौकस रहो।
और अंत में ये सवाल छोड़ जाती है,
हाँ, कि क्या हम अगली महामारी के लिए पिछली गलतियों से सीखने को तैयार हैं, या इतिहास खुद को दोहराएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।